नमस्कार, मैं रविश कुमार। अच्छी बात है कि 98 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने से देश परेशान नहीं है। दिल्ली में एक रात में गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, दिल्ली परेशान नहीं है। जो देश इन बातों से परेशान नहीं है, उस देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है कि बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है, जिस पर राजद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और साजिश रचने के आरोप हैं। भारत की छवि खराब करने के आरोप हैं। भारत की छवि खराब करना एक नया आरोप जान पड़ता है। इसे कानूनी रूप से कहां परिभाषित किया गया है यह बताना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ शब्द चल पड़े हैं। पुराने हैं, लेकिन इस बार पुलिस की निगाह से संदिग्ध हुए हैं। टूलकिट और डिजिटल स्टॉर्म, यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए किसी चीज को वायरल कर देना, आए दिन होता रहता है और आप इसके आदि भी हो चुके हैं। याद कीजिए, पिछले साल 17 सितंबर को सरकारी भर्ती परीक्षाओं के सताए नौजवानों ने ऐसे बहुत सारे पोस्टर बनाए और ट्रेंड कराया, जिसे आज आप टूलकिट कह रहे हैं। इस अभियान को भी डिजिटल स्टॉर्म कहा जा सकता है। उस समय ऐसे पोस्टर खूब आते थे कि कितने बजे थाली बजानी है, किस किस मंत्री को टैग करना है, कौन सा हैशटैग ट्रेंड कराना है। इसे आराम से टूलकिट कहा जा सकता है। बस तब ये पोस्टर बनाकर इनबॉक्स में वायरल हो रहा था और इसे ट्विटर पर भी शेयर किया जा रहा था। उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। उस मौके पर विरोध जताकर सरकारी भर्ती परीक्षाओं के नौजवान अपना विरोध जताने लगे और सरकार को झकझोरना चाहते थे। गनीमत है कि तब इसे इस तरह की योजना को साजिश नहीं माना गया, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। कोई कह सकता है कि बेरोजगारों के ऐसे अभियान से लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारत की छवि दुनिया भर में खराब हो गई। 22 साल की दिशा ए रवि को इस प्रकार के टूल किट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पहले मामला समझते हैं। यह ध्यान रखें कि टूल किट शब्द का प्रयोग पहली बार पुलिस ने नहीं, ग्रेटा थनबर्ग ने किया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और एक टूल किट भी जारी किया। इस टूल किट में लिखा है कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश के भीतर और देश के बाहर से क्या क्या करना है। इसमें कहीं भी हिंसक गतिविधि की बात नहीं है। बेशक लिखा है कि वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, किसी खास समय पर हैशटैग आस्क इंडिया वाई नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, तस्वीरें साझा करनी है। ऐसा करने के लिए 23 जनवरी, 26 जनवरी, 13, 14 फरवरी का दिन तय किया गया। अगर मार्च में हिस्सा नहीं ले सकते तो डिजिटली हिस्सा लीजिए। फोटो वीडियो को किसी खास ईमेल पर भेजने की बात कही गई है। साथ ही वही फोटो वीडियो प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर अपने राज्य के प्रमुखों को टैग करने की भी बात है। भारतीय दूतावासों, सरकारी दफ्तरों, मीडिया के दफ्तरों और अंबानी अडानी के दफ्तर के बाहर दुनिया भर में प्रदर्शन करना है, ये लिखा है। तो आपने देखा कि जिस तरह से 17 सितंबर 2020 के अभियान के लिए बेरोजगार नौजवान टूल किट वायरल करा रहे थे कि कब थाली बजानी है, कब क्या करना है, वही भाषा और उसी तरह की योजना ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में बताई गई है, जिसे टूल किट कहा जा रहा है। इंटरनेट पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में टूल किट की एक परिभाषा इस तरह से भी दी गई है, स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर यूजफुल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और एक्टिविटी कंसिडर्ड टूगेदर। हिंदी में कहिए तो ऐसा कौशल और ज्ञान जो किसी खास मकसद या गतिविधि के लिए जरूरी है। टूल किट का इस्तेमाल सरकार भी अपनी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार में करती है। ट्विटर पर जो लोग इस शब्द को आतंकवादी साजिश का हिस्सा बनाने में लगे हैं, संदिग्ध बनाने में लगे हैं, उनकी मदद के लिए बता दूं कि 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि पिछले 2 साल में 3,500 से अधिक शिल्पकारों, बुनकरों को डिजाइन में सहायता दी गई, 1,000 कलाकारों को टूल किट भी दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी #PMInKashi। पीएम ने टूल किट देने की बात की थी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर भी कई टूल किट हैं, स्मार्ट सिटी का टूल किट, उसमें भी इसी तरह की बातें हैं कि क्या क्या करना है। ऐसे ही आर्थिक मामलों के विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंडिया की वेबसाइट पर भी PPP मॉडल के बारे में एक टूल किट डाला है। भाषा में आ रहे बदलाव को समझना चाहिए। अब पहले भाषा में बदलाव किया जाता है और फिर उसकी आड़ में सिस्टम काम करने लगता है। समाज में पहले की भाषा जब विस्थापित हो जाती है तब सिस्टम को कुछ भी करने का बल मिल जाता है। जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ही बजट के चमकीले शब्द FDI का मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी कर दिया। वही हाल टूल किट का भी हो रहा है। अगर यह बुरा होता तो मंत्री इसका नाम ना लेते। अब जो आगे आप सुनने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। इसी तरह की योजना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी के सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, गुप्त रूप से नहीं, सबके सामने। यह भाषण YouTube पर भी है, 11 फरवरी के दिन का दिया गया है, यानी दिल्ली पुलिस टूल किट के मामले में बहुत पहले केस दर्ज कर चुकी थी। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बता रहे हैं वह एक तरह का मौखिक टूल किट है। बता रहे हैं कि कैसे हंसाने वाली और डराने वाली चीजें वायरल करानी है। ये उन्हीं के शब्द हैं, हंसाने वाली और डराने वाली।
एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही एक घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा। और एक किया हुआ है, उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का दो ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए।
अब ये अलग सवाल है कि गृह मंत्री को अपने कार्यकर्ताओं को हंसाने वाली के साथ साथ डराने वाली चीजों की ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। यह इस पर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न का सामना करने वालों की सोचने समझने की ट्रेनिंग किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कर दी है। टूल किट का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है जैसे किसी ने सीट के नीचे लवारिस वस्तु रख दी हो, मगर यहां तो ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट में यह टूल किट अभी तक रखी हुई है। जाहिर है यह कोई लावारिस वस्तु नहीं है, फिलहाल ग्रेटा इसकी वारिस हैं और 49 लाख उनके फॉलोवर इसे देख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 3 फरवरी को जो ट्वीट किया था उसे डिलीट किया और यह भी लिखा कि इसे इसलिए डिलीट किया क्योंकि वह पुराना हो चुका था, यानी ग्रेटा ने छिपाकर डिलीट नहीं किया। कारण भी बताया, नए टूल किट में 13-14 फरवरी की योजनाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप ग्रुप चैट में लिखा है कि इसके ट्वीट करने से हमारे खिलाफ UAPA लग सकता है। यह भी एक सवाल है कि क्या सरकार ने ट्विटर से ग्रेटा थनबर्ग के खाते पर मौजूद इस टूल किट को हटाने का कोई आग्रह किया है और ट्विटर का क्या जवाब है। क्या पुलिस ग्रेटा से पूछने स्वीडन जाएगी? अगर जाए तो कम से कम पता कर ले कि ग्रेटा कहीं अटलांटिक की यात्रा पर तो नहीं निकल पड़ी है। क्या पुलिस जानबूझकर इस वक्त ग्रेटा से दूरी बना रही है या जांच के बाद तय करेगी कि ग्रेटा का पीछा किया जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस टूल किट को बनाने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और दिशा ने टूल किट ग्रेटा को टेलीग्राम से भेजा। तो क्या पुलिस ग्रेटा को इस साजिश का हिस्सा मानती है? इसका ठोस उत्तर नहीं मिला।
एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं।
दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के ज्वाइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि 4 फरवरी को जिस टूल किट की जानकारी मिली उसे खालिस्तानी संगठन की मदद से बनाया गया था। 11 फरवरी को निकिता के यहाँ सर्च हुआ जिसमें काफी सारे संवेदनशील सबूत मिले हैं।
11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता शांतनु एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था।
जैसा प्लान था वैसा किया गया। उस दिन तो कई लोग किसान आंदोलन का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे थे और ट्रेंड करा रहे थे। लाल किले की हिंसा के बाद किसान आंदोलन के खिलाफ ट्रेंड भी होने लगा। ट्विटर पर हैशटैग का अभियान का हिंसा से क्या संबंध है, इस बारे में पुलिस को कुछ चीजें और साफ करनी चाहिए। इस संदर्भ में मेरे भी कुछ सवाल हैं। पहला कि जिस टूल किट की बात की जा रही है उसके लिखित स्वरूप में कहीं भी हिंसा फैलाने की बात नहीं है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। दूसरा कि क्या किसान आंदोलन में हिंसा की योजना बाहर के लोग कर रहे थे जिसकी जानकारी किसान संगठन और किसानों या नेताओं को नहीं थी। हिंसा होने से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आंदोलन का होना था, इसलिए किसान संगठन शुरू से शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे। तो क्या दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि किसान संगठनों का दिल्ली की हिंसा में कोई हाथ नहीं था, और क्या इस हिंसा का मकसद किसान आंदोलन को बदनाम करना था? जैसा प्लान था वैसा किया गया। प्लान एग्जैक्टली क्या था यह अभी साफ होना बाकी है। दिल्ली पुलिस ने दिशा और शांतनु पर भी बयान दिया है। शांतनु की मां ने कहा है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर है और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक एनजीओ XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए।
मुझे तला शेतकऱ्याबद्दल म्हणजे खूप तळमळ आहे। आता सध्या शेतकऱ्यांचं किती नुकसान होतंय, त्यानंतर पुन्हा आता पर्यावरणामध्ये पण सारखं डोंगर आपण कमी करतोय, वृक्षतोड करतोय, नद्या थांबवतोय। आता तुम्ही बघा बांधकामं कशी होत चाललेली आहेत। हे पर्यावरणावर हे व्हायचं त्याचं जरा फोकस, आणि शेतकरी लोकांना त्यांनी पाठिंबा दिलाय, मग यात काही चूकच नाही ना। आणि मी पण देते, मी एका शेतकऱ्याची मुलगी, आज माझे भाऊ पण शेतकरी आणि बाकी इतर शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा आमचं आहेच आहे ना।
पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। इसके अलावा 70 और लोग शामिल थे। इसी मीटिंग में एमओ धालीवाल भी शामिल था जो कि कनाडा का रहने वाला है और पुलिस बता रही है कि एक खालिस्तानी समर्थक है। इस मीटिंग में तय हुआ कि 26 जनवरी के पहले एक बड़ा अभियान चलाना है। पुलिस के मुताबिक एमओ धालीवाल को पुनीत नाम की एक महिला ने निकिता से संपर्क कराया था और फिर बाद में निकिता ने शांतनु और जो दिशा रवि है उसे संपर्क किया। इस मीटिंग में तय हुआ कि एक टूल किट क्रिएट करना है और इसके जरिए एक डिजिटल स्टॉर्म लाना है जिससे कि ऐसा माहौल बने कि 26 तारीख को जो किसान हैं वो हिंसा करें और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। हालांकि आज की प्रेस वार्ता में पुलिस ने इसमें से कई बातें तो बताई, लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं जो पुलिस ने नहीं बताई।
अभी तक पुलिस इनकी बैठक में मो धालीवाल के होने का हवाला दे रही है जो पोएटिक जस्टिस नाम की संस्था से जुड़ा है। धालीवाल को खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है। इस नौजवान ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक बयान जारी किया था और लिखा था कि कनाडा में भी अन्याय होता है तो हम बोलते हैं, दुनिया में कहीं अन्याय होता है तो हम बोलेंगे। इसमें तो यही लिखा है कि नफरत के खिलाफ हैं, हम प्यार के लिए काम करते हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम लोकतंत्र में नियमों में यकीन करते हैं। क्यों भारत में किसानों की हत्या हो रही है? क्यों भारत अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहा है? क्यों भारत अपने लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? इसमें यह भी लिखा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने रियाना, ग्रेटा थनबर्ग या किसी सेलिब्रिटी के साथ तालमेल नहीं किया है, किसी को ट्वीट करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, हमने जरूर यह अपील की है कि दुनिया इसे साझा करे। इंडियन एक्सप्रेस ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में लिखा है कि यह संस्था मार्च 2020 में बनी थी, दक्षिण एशियाई समुदाय के बीच मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर जागरूकता लाना है। इंडियन एक्सप्रेस से धालीवाल ने कहा है कि हमारा कोई खालिस्तान समर्थक एजेंडा नहीं है, हम असली लोकतंत्र में संविधान द्वारा दिए गए संवाद और मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं 26 जनवरी की घटना के जवाब में इस संस्था ने एक बयान में यह भी कहा है कि हम किसानों के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भारत में प्रेस की आजादी नहीं है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 142वां है। इंडियन एक्सप्रेस की अंजू अग्निहोत्री चाबा ने धालीवाल से बात की है। अंजू की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस के पास 17 सितंबर 2019 का धालीवाल का एक मैसेज है जो सोशल मीडिया पर है, जिसमें धालीवाल कहते हैं कि मैं खालिस्तानी हूं, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि खालिस्तान एक विचार है, खालिस्तान का आंदोलन जिंदा है और सांसें ले रहा है। इस पर अंजू ने धालीवाल से सवाल किया तो धालीवाल का जवाब है कि सिखों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए ऐसा कहा, क्योंकि समय समय पर कनाडा में सिखों को आतंकवादी कहकर किनारे कर दिया जाता है। उनका कहना है कि फेसबुक पर पूरे पोस्ट को पढ़ा जाए, अगर कनाडा में किसी को आतंकवादी कहा जाए और कोई उसके साथ खड़ा हो जाए तो क्या वह खालिस्तानी माना जाएगा, ये आपको समझना है।
जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनित के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना।
ट्विटर पर अगर ग्लोबल ट्रेंड कराना, छवि खराब करना या साजिश का हिस्सा है तब तो फिर पूरा ट्विटर ही किसी साजिश का हिस्सा है। बात यह है कि आप जहां पहले दबदबा बनाए रखते थे वहां पोल खुल जाती है, फिर वो माध्यम दुश्मन लगने लगता है, फिर आप नए माध्यम की तलाश करने लगते हैं, यह अलग विषय है, बाद में कभी। पंजाब में एक सच्चाई है कि कुछ लोग खालिस्तान की बात करते हैं लेकिन उसका विरोध भी पंजाब के लोग ही दिन रात करते हैं, गोदी मीडिया नहीं जाता करने के लिए। खालिस्तान को किसानों से जोड़ने की जल्दी में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह हाशिए की सच्चाई है। पंजाब के ही कई किसान संगठन इस धारा के खिलाफ हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमने आपको प्राइम टाइम में बताया था कि किसान आंदोलन में हरिंदर बिंदु आई हैं, वे भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की सदस्य हैं। हरिंदर बिंदु के पिता की खालिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस किसान मोर्चे में ऐसे कई लोग आए हैं जिनके किसी प्रिय को खालिस्तानियों ने मार दिया था। वे आतंकवाद का विरोध करते हैं, विरोध करने वाले किसान हैं और इस तरह के पोस्टर किसान मोर्चे में खूब दिखे कि हम आतंकवादी नहीं हैं। लेकिन जो ट्विटर पर हैशटैग चलाने, फोटो वीडियो अपलोड करने की योजना है, उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नजर आता है क्या जो लगे कि आतंकवादी योजना है? पुलिस इस हिस्से को कैसे साबित करेगी देखना होगा। लेकिन ग्रेटा ने जो ट्वीट किया है उसमें वही सारी बातें हैं जो आए दिन ट्विटर पर हैशटैग चलाने वाले करते रहते हैं। पुलिस की दलील है कि 26 जनवरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया। क्या पुलिस यह मानती है कि अमेरिकी पॉप स्टार रियाना ने उसी के तहत ट्वीट किया? 2 फरवरी को रियाना ने सीएनएन की खबर ट्वीट की थी। क्या सीएनएन ने खबर साजिश के तहत छापी थी? कमाल है। क्या उस सेलिब्रिटी में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस का ट्वीट भी शामिल होगा? अगर आप घटनाओं को देखें तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन की कब से चर्चा हो रही है। हाल ही में ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा उठा, क्या ब्रिटेन के सांसद किसी साजिश का हिस्सा हैं? किसान आंदोलन को लेकर कई देश से बयान भी आए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हैशटैग चलाने की योजना को आतंकी साजिश और भारत के खिलाफ साजिश से जोड़ रहे हैं। पुलिस की धाराओं में जितनी बातें हैं उससे अधिक और आगे जाकर बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। क्या इसलिए कि लड़कियों को डराया जा सके, लड़कियां डर जाएं? 22 साल की एक लड़की आज सबके सामने साजिश रचने वाली गिरोह के मुखिया के तौर पर पेश कर दी गई है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर FFF से जुड़ी है। यह वो प्रयास है जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शुरू किया था। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हर शुक्रवार को जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। दिशा ए रवि भारत में इस प्रयास की संस्थापकों में से एक है। 2019 में जब वे माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु में पढ़ती थीं, तब फ्राइडे फॉर फ्यूचर की स्थापना की थी। कृषि परिवार से आने वाली दिशा का जलवायु और पर्यावरण के सवालों को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक था। जब केंद्र सरकार ने पर्यावरण के असर के मूल्यांकन के लिए नया कानून बनाने का मसौदा तैयार किया तब इसे लेकर दिशा जागरूकता फैलाने में व्यस्त हो गई। हिंदू अखबार में लिखा है कि इस कैंपेन को लेकर भी दिल्ली पुलिस को दिक्कत हो गई। इन्होंने पर्यावरण कानूनों में संशोधन को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद UAPA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने वापस ले लिया। इस संस्था के लिए काम करते हुए दिशा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन में उसके बारे में लेख छपा। दिशा ए रवि मांसाहारी से शाकाहारी हो गई क्योंकि उसे लगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी शहर में एक स्टार्टअप के साथ काम करने लगी जो शाकाहारी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। बेंगलुरु में जहां भी पेड़ कटते हैं उसे रोकने में दिशा ए रवि सक्रिय हो जाती हैं। शाकाहारी होने के बाद भी आज की राजनीति में दिशा को शत्रु की तरह देखा जा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? 22 साल की दिशा ए रवि के किसी ख्याल से या गतिविधि से देश इतना डर गया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ट्वीट करना पड़ा है और लिखते हैं कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। हरियाणा के गृह मंत्री का यह बयान काफी सीरियस है। वे समूल नाश का इस्तेमाल करते हैं। संविधान में किसी भी गंभीर आरोप की सजा अपराध की सजा के तौर पर समूल नाश का प्रावधान नहीं है, ना ही इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। अनिल विज को कम से कम भारत के गृह मंत्री से सीखना चाहिए। वे कितने प्यार से चटखारे लेते हुए हंसाने वाली और डराने वाली चीजों को फैलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन समूल नाश के लिए नहीं, सिर्फ एकाध चुनाव जीतने के लिए। आप फिर से सुने कि किस अंदाज में 11 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह हंसाने वाली और डराने वाली चीजों के वायरल कराने का आइडिया दे रहे हैं।
अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता और खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर कर अंदर डालनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस कम से कम अमित शाह के इस बयान को सीरियसली ना ले। दोबारा इसलिए सुनाया क्योंकि ये वाकई सीरियस है। हंसाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन डराने वाली चीजों से किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे अभियानों के बाद केस मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। आईपुआ की सदस्य कविता कृष्णन का कहना है कि FIR भी वापस ली जाए। 78 पर्यावरणविदों ने बयान जारी कर कहा है कि 22 साल की दिशा रवि को तुरंत रिहा किया जाए।
अगर किसी सिटीजन ने कोई गलती किया है तो कानून के दायरे के अंदर रह के आप उनको पनिश करें या जो भी आप लेना चाहते हो एक्शन उसके हिसाब से करें, लेकिन गैर कानूनी की तरीके से एक यंग लड़की को अंदर जेल में डाल देना ये गलत बात है। ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ मैसेज भेजना चाह रहे हो, सरकार खास तौर पे, कि सबको डराना चाह रहे हो कि ऐसे यंग बच्चों को आप अरेस्ट करते हो। इससे पहले भी एक यंग लड़की को आपने किया है, कई सारे यंग पीपल को आप लोगों ने जेल में डाला है। इसका मतलब आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी को कई मैसेज जा रही है, चाहे वो JNU को जा रही है या हैदराबाद यूनिवर्सिटी को जा रही है, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शायद गवर्नमेंट मैसेज देना चाह रही है स्टूडेंट्स को कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते।
तो अब आपकी मांग क्या है, क्या मांग की है अपने साझा बयान में?
हमारी मांग ये है कि उस जिनको आपने अरेस्ट किया अभी खास तौर पर दिशा रवि को, उनको लॉयर लेने का तो राइट दीजिए, उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए राइट दीजिए जो हमारा कानूनी तौर पर हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इस तरीके के लेके अंदर बंद कर देना ये गलत तरीका है। कोई टेररिस्ट तो नहीं है, पढ़ी लिखी बच्ची है, एनवायरमेंट के ऊपर स्पेशलिस्ट है, तो उनको क्या आपने क्या किया, क्या मैसेज क्या है इसमें?
इस गिरफ्तारी ने फिर से किसानों के आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। जब किसान अपने स्तर पर करते हैं तो सरकार को बुरा लगता है, और जब सरकार के कदम से मामला ग्लोबल हो जाता है तो किसे बुरा लगना चाहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लोकल लेवल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिशा रवि के पक्ष में ट्वीट किया कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से, #ReleaseDishaRavi, #DishaRavi, #IndiaBeingSilenced। प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, CPM नेता सीताराम येचुरी, अभिनेता सिद्धार्थ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति की भांजी मीना हैरिस, कनाडा की कवयित्री रूपी कौर, सुनीता नारायण, बिल मक्कीबेन से लेकर तमाम लोगों ने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा है कि किसानों के समर्थन में आने वाली दिशा ए रवि के साथ खड़े हैं, तुरंत रिहाई की मांग भी करते हैं। आज बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्किल पर दिशा के समर्थन में लोग बाहर आए। बेंगलुरु शहर में पर्यावरण को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। निहाल किदवई ने वहां प्रोफेसर रामचंद्र गुहा से बात की।
हमारे नौजवान जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसा प्रस्ताव करना, देश का भविष्य क्या होगा? जो हमारे सबसे माने बहादुर स्वतंत्र खोजने वाले लोग हैं, तो ये मैं इमरजेंसी में भी मैं स्टूडेंट था और ये वैसी उस वैसी स्थिति आ गई है हमारे पास। डॉक्यूमेंट का जवाब डॉक्यूमेंट से होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा लेख का जवाब लेख से होता है। ये कोई हिंसाकारी से बिल्कुल, ये देखिए ये तो बिल्कुल तानाशाही आ गई हमारे देश में।
वही हाल नवदीप का है। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली 24 साल की एक लड़की नवदीप कौर जेल में है। क्या यह भी गलत काम है कि कोई लड़की मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़े? इससे तो भारत की छवि और शानदार होती है कि भारत में दिशा और नवदीप जैसी लड़कियां हैं। क्या आप दिशा और नवदीप से इतना घबरा रहे हैं तो खुलकर कहिए, कान में कहिए, डरिए नहीं, राजद्रोह का सहारा मत लीजिए। पंजाब के कई शहरों में नवदीप कौर की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। संगरूर में नवदीप कौर और बाकी किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतले फूके गए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से ब्लॉक धूरी के गांव में पुतले फूके गए। मानसा के गांव रल्ला में भी किसान मजदूरों ने भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार खेती कानून रद्द करने के बजाय नौजवान, बुजुर्ग किसान और लड़कियों पर मामले दर्ज कर रही है और जेल भेज रही है। पंजाब की महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सारे मामलों की जानकारी दी। नवदीप कौर पर 3 मामले हैं, 2 में जमानत मिल गई है, 1 में बाकी है। दिशा की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ हो रही बातें बता रही हैं कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के आगे आने से डर रहा है। पहली महिला पुलिस अफसर, पहली महिला पायलट टाइप बनने से कहीं ज्यादा शानदार काम है हवा में घुलते जहर के खिलाफ आवाज उठाना और किसी मजदूर के पैसे के लिए कंपनी के मालिक से भिड़ जाना। सवाल है कि महिलाएं जब राजनीतिक हो जाती हैं तो राजनीति घबराने क्यों लगती है? ब्रेक के बाद। अगर आप प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर खरीदने का शौक रखते हैं तो मध्य प्रदेश जाइए। वहां पर अनुराग बता रहे हैं कि बाकी तेल भी 100 रुपए के करीब पहुंचने लगे हैं।
पेट्रोल पंप में प्रीमियम पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है। राकेश परेशान है, गाड़ी में तेल भरवाएं या बैंक की किश्त भरें?
गाड़ी किश्त बड़ी मुश्किल से भरा रही है, रोज के 200-250 दिन भर में हो रहा है। और कोई मेहनत करे तो क्या बनेंगे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल है तो महंगा ही महंगा हो जा रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं निकल रहा।
डॉक्टर विजया मेनन दो तरफा परेशानी झेल रही हैं। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बाहर पेट्रोल की कीमतों से परेशान हैं, घर में रसोई गैस से।
पेट्रोल का प्राइस मेरे ख्याल से एमपी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पे एमपी में लग रहा है। अब तो जाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात, इस कोविड के कारण तो हमारी पूरी तनख्वाहें आधी कर दी, इंक्रीमेंट है नहीं। 1-2 साल तक तो मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, तो हम कैसे जाएंगे? बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो गया है। और ऐसे फ्यूल प्राइस चढ़ते जाएंगे तो हमें तो जाना बंद करना पड़ेगा या हमें वॉकिंग करना पड़ेगा।
सोमवार को भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 61 पैसे थी। साधारण पेट्रोल की 96 रुपए 96 पैसे, डीजल की 87 रुपए 51 पैसे। मध्य प्रदेश पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाला राज्य है। यहाँ पेट्रोल पर 33% वैट लगता है और इसके अलावा हर लीटर पर 4.5 रुपए का सेस भी लगाया जाता है। इसी तरह डीजल पर 23% वैट के अलावा 3 रुपए प्रति लीटर सेस देना होता है। इस फर्क को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे खेतिया से समझें। सीमा के इस पार खेतिया में पेट्रोल 58 रुपए 26 पैसे बिका, जबकि दूसरी तरफ यानी महाराष्ट्र के खेड़ दीगर में 95 रुपए 67 पैसे। पंप मालिकों की एक और मुसीबत है, कीमत 3 अंकों में पहुंच गई, लेकिन कई जगहों पर मशीनों में 3 अंकों में कीमत का डिजिटल डिस्प्ले नहीं है तो पेट्रोल बिक नहीं रहा।
जो हमारे यहाँ डिस्प्ले है, आप देखिए एक डिस्प्ले आता है जो डेली का डेली रेट बताता है मशीन के अलावा, उसमें भी रेट कैसे चेंज होगा ये अभी हम पता कर रहे हैं कंपनी वालों से भी।
सरकार में एक मंत्री जी वर्तमान के सवाल पर सोलर ऊर्जा टाइप भविष्य के जवाब दे रहे हैं, दूसरे सवाल सुनते ही कार चलाने लगे।
ये तो पेट्रोल और डीजल के दाम भारत सरकार ने जो वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं उसके अनुसार तय होते हैं। अगर वहाँ कम हो जाते हैं तो इधर भी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ बढ़ जाते हैं, तो वो एक पूरा पूरे भारत में उसका किया जाता है।
अपने टैक्स भी तो ज़्यादा है सर।
नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा।
कांग्रेस सरकार की तथाकथित दूरदृष्टि से खुश नहीं दिखती, पूछ रही है मुख्यमंत्री की साइकिल कहाँ है।
कहाँ गई वो साइकिल, ने कहाँ पंचर हो गई, ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियाँ चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मांग मार और रसोई गैस की मार, ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी केवल मुंगरी लाल के सपने दिखा रही है कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये आएंगे तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ जाएगा। अरे आज तो लोग परेशान हैं, इसका जवाब चाहिए। और हम लोग 22 तारीख को जब विधानसभा सेशन चलेगा साइकिल से जाएंगे।
ये तो तय है कि बीजेपी की साइकिल गायब हो गई, लेकिन ये भी लगता है कि प्रतिपक्ष की साइकिल भी पंचर ही पड़ी है। जनता त्रस्त है, सुनने वाला कोई नहीं।
क्रिकेट में जो स्कोर है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक हिस्सा कंपनी का है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार का। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।